السلام علیکم، یہ پارٹ 20 ہے ناول ڈیول مائنڈ۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمن خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد۔ تو آئیے سنتے پارٹ 20۔ بلیک ہارٹ ایجنسی کے مین ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننا پڑتی ہیں، جولیا نے کہا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ سیٹلائٹ سسٹم سے چیک کر کے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے یہاں ریڈ کمانڈوز بھیجے گئے تھے، تو پھر کاک فلے کو یوں یہ کیوں معلوم نہیں ہوا کہ اس کے ریڈ کمانڈوز کا کیا حشر ہوا ہے؟ اور اس ہیلی کاپٹر میں ریڈ کمانڈوز نہیں بلکہ ہم موجود ہیں، اور وہ بھی زندہ، چوہان نے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، جولیا نے کہا۔ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس ہیلی کاپٹر میں داخل ہوتے ہی بلو پروٹیکشن سسٹم آن کر دیا تھا۔ اس سسٹم کی وجہ سے ہمیں ہیلی کاپٹر کے اندر کسی سیٹلائٹ سے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سسٹم انہوں نے شاید دوسرے ملکوں کے راڈار اور سیٹلائٹ سسٹم سے بچنے کے لیے نصب کر رکھا تھا، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ہیلی کاپٹر میں کتنے کمانڈوز ہیں اور کس قدر اسلحہ موجود ہے، عمران نے کہا۔ تو ان کے چہروں پر سکون آ گیا۔ تو کیا قافلے نے اس میدان میں ہونے والی جنگ بھی نہیں دیکھی ہوگی؟ تنویر نے پوچھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو وہ اس طرح مجھ سے ٹرانسمیٹر پر بات نہ کرتا، بلکہ اب تک یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہوتا، عمران نے کہا۔ کیا ٹرانسمیٹر کے ساتھ لگے ہوئے میٹر سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر صحرا کے کسی حصے میں ہے اور کہاں ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ ہاں، یہ کمپیوٹرائزڈ میٹر ہے، اس پر تمام تفصیل درج ہے۔ اسکرین پر دیکھو تو اس پر صاف لکھا ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر کہاں سے اڑایا گیا تھا، کتنی بلندی پر ہے، اور اس نے یہاں تک کتنا سفر کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو وہ پینل کے ساتھ لگی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین کی طرف دیکھنے لگا، جس پر واقعی وہی تفصیل درج تھی جس کے بارے میں عمران نے انہیں بتایا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کار فلے کو اس بات کا شک نہیں ہوا ہوگا کہ اس ہیلی کاپٹر میں کوئی اور نہیں بلکہ ریڈ کمانڈوز کا ہی پائلٹ ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے تو ایسا ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اگر اسے شک بھی ہوا تو اس کا شک ہمارے راستے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا، ہم ہیڈ کوارٹر تک ضرور پہنچیں گے۔ کار فلے پاکشیا کی جو چار فائلیں لے گیا ہے وہ ایک مائکرو فلم کی شکل میں ہے، اگر ہم اس فلم تک نہ بھی پہنچ سکے تو ہمارا مقصد بلیک ہارٹ ایجنسی کی تباہی ہے۔ بلیک ہارٹ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا تو وہ مائکرو فلم بھی ختم ہو جائے گی، جس میں چاروں اہم فائلوں کی کاپیاں موجود ہیں، عمران نے کہا۔ او پھر تو ہم اس گن شپ ہیلی کاپٹر سے بھی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، اگر ان کا ہیڈ کوارٹر اسی صحرا میں ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ ہوگا، کیونکہ اس صحرا میں آنے والے طوفان معمولی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ طوفان بیرونی عمارتوں کو تنکوں کی طرح اڑا سکتے ہیں، اس لیے ان طوفانوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یقیناً ہیڈ کوارٹر زمین دوست ہی بنایا ہوگا، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر کے اندر جانا پڑے گا، صفدر نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر میں ہم تب ہی داخل ہو سکیں گے جب کاغذ ہمیں ہیلی کاپٹر اندر لے جانے کی اجازت دے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر کے اندر نہیں جانے دے گا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ وہ ڈیول مائنڈ ایجنٹ ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر باہر ہی روک لے اور مجھے تم سب کی لاشیں اوپر سے ہی باہر گرانے کا حکم دے دے، عمران نے کہا۔ او اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ کرنا کیا ہے، اس کا حکم مجھے ماننا ہی پڑے گا، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو خفیہ ہیڈ کوارٹر سے ایک میزائل نکلے گا اور پھر ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہم سب کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ تم سب کو اپنی جان پیاری ہو یا نہ ہو، مجھے تو بہت پیاری ہے، اپنی جان इसलिए मैं तुम सबको नीचे कूदने का कह दूंगा और मुझे यकीन है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरा हुक्म ना माने। इमरान ने कहा, तुम्हारा ये फजूल हुक्म ना मानने का ऐलान सबसे पहले मैं करूंगा, जूलिया ने गुर्रा कर कहा। ओ मैं कहता हूँ कि इन सबसे पहले तुम ही मेरा हुक्म मानोगी, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। चलो फिर देखते हैं कि सवाल पैदा होता है या सवालिया निशान, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हेलीकॉप्टर इस तरफ उड़ाता ले गया जिस तरफ मेटा हेडक्वार्टर के होने की निशानदेही कर रहा था। कारफुल्ले के चेहरे पर उलझन के तासरात थे। इसने अभी चंद लम्हे पहले ट्रांसमीटर पर रेड कमांडोस के 09 हेलीकॉप्टर के पायलट से बात की थी, जिसने इसे बताया था कि इमरान और इसके साथियों ने इनके 9 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं और इनके 50 से ज्यादा रेड कमांडोस मारे जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ वही पायलट जिंदा था जिससे काकफिल्ले की बात हुई थी। इमरान और इसके साथियों ने 50 से ज्यादा रेड कमांडोस को हलाक कर दिया था और 9 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए थे और 09 हेलीकॉप्टर के पायलट ने इन सबको हलाक कर दिया था। ये बात किसी तरह से काकफिल्ले के हलक से नहीं उतर रही थी। हालांकि पायलट ने इसे बताया था कि इसने बुलंदी पर जाके नीचे बमबारी की थी और बाकी 6 एजेंटों पर फायरिंग भी की थी। इनकी लाशें इसके सामने पड़ी हुई थी। मुमकिन था कि इस पायलट के उन्हें बर वक्त कार्रवाई करके वाकई इस जगह बमबारी और फायरिंग की हो जहां इमरान और इसके साथी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक पायलट ने इमरान और इसके साथियों को हलाक कर दिया था। ये बात काकफिल्ले को बुरी तरह से खटक रही थी। इसने कंट्रोल सेक्शन में एल्बर 2 से रابطہ किया था, लेकिन एल्बर 2 वहां मौजूद नहीं था। इसे बताया गया था कि एल्बर 2 टिनर में फैन ठीक करने के लिए गया हुआ है। काफिले को एल्बर 2 पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ बताए बगैर फैन ठीक करने के लिए चला गया था। हालांकि इसने एल्बर्ट 2 को सख्ती से कहा था कि वो इस वक्त तक पाकिस्तानी एजेंटों पर नजर रखेगा जब तक कि कर्नल डेवगन रेड कमांडोज के साथ वहां पहुंचकर इन सबको हलाक नहीं कर देता, लेकिन वो उससे पहले ही कंट्रोल रूम से निकल गया था। जब काकफिल्ले की एल्बर्ट 2 से बात ना हुई तो इसने ट्रांसमीटर पर कर्नल डेवगन से रابطہ करने की कोशिश की थी, लेकिन कर्नल देवगन से इसका रابطہ ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था। फिर इसने बारी बारी दूसरे हेलीकॉप्टरों के पायलट से रابطہ करने की कोशिश की और फिर इसका रابطہ 09 से हो गया। आखिर बात क्या है, मुझे इस कदर उलझन क्यों हो रही है? मैंने पायलट से बात की थी, इसके लहजे से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझसे कोई गलत बयानी नहीं कर रहा और वाकई इसने जो कहा था वो सच है। मैंने इसे लाशें हेडक्वार्टर लाने का कह दिया है, वो लाशें लाएगा तो मैं इन्हें बाहर ही चेक करा लूंगा। इसका हेलीकॉप्टर में इस वक्त तक हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक कि मैं इससे मुतमईन ना हो जाऊं और इमरान और इसके साथियों की लाशें ना देख लूं। लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में नोकीली सुइयों की तरह से चुभ रही है, वो क्या बात हो सकती है? काकफिल्ले ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसके चेहरे पर वाकई बेपनाह उलझन के तासरात दिखाई दे रहे थे। वो काफी देर सोचता रहा, फिर से दोबारा इन तमाम बातों को जहन में दोहराया जो बातें इसने 09 से की थी। फिर अचानक इसके जहन में एक कोंदा सा लपका और वो बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर यकलक बौखलाहट और इंतहाई परेशानी के तासार लहराने लगे। ओहो, मैं इस कदर अहम बात कैसे भूल गया था, इसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर तेजी से एक फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस करके रिसीवर कान से लगा लिया। यस स्टेशन हेयर फ्रॉम रेड कमांडो सेक्शन, रابطہ मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। Carfully speaking, Carfully ने इंतहाई सख्त आवाज में कहा। ओ यस बॉस हुकुम, दूसरी तरफ से स्टेफन ने यकलक मौदबाना होते हुए कहा। क्या कर्नल डेवगन डिजर्ट मिशन पर तुम्हारी मौजूदगी में गया था? कांसले ने पूछा। यस बॉस, कर्नल साहब ने जाते हुए यहाँ का चार्ज मेरे हवाले कर दिया था। वो मेरे सामने ही यहाँ से रवाना हुए थे, स्टेफन ने जवाब दिया। वो यहाँ से कितने रेड कमांडोज ले गया था? कांसले ने पूछा। इनके साथ 50 रेड कमांडोज थे, 10 पायलट और वो खुद। कुल मिलाकर यहाँ से 61 अफराद गए थे, स्टेफन ने कहा। ब्लैक बर्ड्स को जो पायलट ले गए थे, इनके नाम बताओ, कार्फिल्ले ने कहा। और दूसरी तरफ से स्टेफन इसे पायलट्स के नाम बताने लगा। ब्लैक बर्ड 09 के पायलट का नाम जेकर है ना? कार्फिल्ले ने कहा। यस बॉस, ब्लैक बर्ड इज बर्ड 09 जेकर की ही तहवील में है, दूसरी तरफ से स्टेफन ने जवाब देते हुए कहा। और कार्फिल्ले तभी सांस लेकर रह गया। हो, इसका मतलब है कि 09 के जिस पायलट से मेरी बात हुई थी वो जेकर नहीं था, कार्फिल्ले ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो जेकर नहीं था, क्या मतलब? मैं समझा नहीं बॉस, दूसरी तरफ से स्टेफन ने चौंकते हुए कहा। हालांकि ये बात कार्फिल्ले ने इससे नहीं की थी, लेकिन इसने कार्फिल्ले की बड़बड़ाहट सुन ली थी। सुना स्टेफन, मेरी अभी थोड़ी देर पहले 09 से बात हुई है। मैं जेकर को बखूबी जानता हूँ और मैंने इसकी आवाज सुनी हुई है, लेकिन अभी मेरी 09 के जिस पायलट से बात हुई थी वो जेकर नहीं था, काफिले ने कहा। ओ, अगर वो जेकर नहीं था तो कौन था? यहाँ से तो 09 जेकर ही ले गया था, दूसरी तरफ से स्टेफन ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी एजेंटों ने कर्नल देवगन समेत तमाम रेड कमांडोज को खत्म कर दिया है और 09 पर कब्जा कर लिया है। इस ब्लैक बर्ड में अब वही पाकिस्तानी मौजूद हैं। इनमें एक शख्स ऐसा है जो आवाज बदलकर बात कर सकता है, लेकिन शायद इसने जेकर की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इसने जेकर की आवाज में बात नहीं की थी, कार्फिल्ले ने कहा। और इसने स्टेफन को 09 के पायलट से होने वाली तमाम बातचीत बता दी। ओ, अगर ब्लैक बर्ड 09 में दुश्मन मौजूद हैं, तो फिर हम इन्हें हेडक्वार्टर में कैसे आने दे सकते हैं बॉस, दूसरी तरफ से स्टेफन ने परेशान होते हुए कहा। यही मैं सोच रहा हूँ, मुझे पायलट की आवाज सुनकर बेहद उलझन हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे बात की थी ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि ब्लैक बर्ड 09 का पायलट कौन था, कार्फिल्ले ने कहा। तो फिर अब क्या करना है बॉस? क्या पाकिस्तानी एजेंटों को हेडक्वार्टर में आने दिया जाए? दूसरी तरफ से स्टेफन ने पूछा। क्या बात कर रहे हो नॉनसेंस, इन्हें हम हेडक्वार्टर में कैसे दाखिल होने दे सकते हैं? अगर वो हेडक्वार्टर में आ गए तो वो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देंगे, कार्फिल्ले ने गुस्से लहजे में कहा। तो क्या मैं इस हेलीकॉप्टर को हिट कर दूं? दूसरी तरफ से स्टेफन ने जल्दी से कहा। क्या ऐसा हो सकता है? कार्फिल्ले ने चौंक कर पूछा। यस बॉस, मेरे पास 0X मिसाइल का कंट्रोल भी मौजूद है और चूंकि 09 मैन हेडक्वार्टर का ब्लैक बर्ड है, इसलिए इस ब्लैक बर्ड की मशीनरी का कंट्रोल रूम में मुकम्मल कंट्रोल मौजूद है। हेलीकॉप्टर कहाँ है और कितनी बुलंदी पर परवास कर रहा है, इसका मुकम्मल डेटा मिल रहा है। मैं चाहूँ तो एक मिसाइल मारकर इस ब्लैक बर्ड 09 को डेजर्ट के किसी भी हिस्से में तबाह कर सकता हूँ, दूसरी तरफ से स्टेफन ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, ये बताओ ब्लैक बर्ड इस वक्त कहाँ है, मेरा मतलब है कि हेडक्वार्टर से कितनी दूर है, कार्फिल्ले ने पूछा। ब्लैक बर्ड ब्लैक एजेंसी का इंतहाई तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर है बॉस, और इस हेलीकॉप्टर से 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से सफर किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर अब से 20 मिनट पहले हार डिजर्ट से उठा था और नहायत तेज रफ्तार से हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है। अगले 10 मिनट बाद वो हेडक्वार्टर के एन ऊपर होगा, स्टेफन ने कहा। ओ ठीक है, तुम इसे निशाना बना और हेडक्वार्टर से दूर ही इसे हिट कर दो। मैं नहीं चाहता कि इस हेलीकॉप्टर को हेडक्वार्टर के बाहर तबाह किया जाए, काफिले ने कहा, यस बॉस, मुझे जीरो एक्स मिसाइल एक्टिव करने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और मिसाइल यहाँ से निकलकर टारगेट की तरफ बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से चंद मील दूर ही टारगेट हिट हो जाएगा, स्टेफन ने कहा। जल्दी करो, जल्द से जल्द इस ब्लैक बर्ड को हिट हो जाना चाहिए, काफिले ने बेचैन लहजे में कहा। यस बॉस, हो जाएगा, स्टेफन ने कहा। और सुनो, इस हेलीकॉप्टर को हिट करने के बाद तुम्हें डेजर्ट में मजीद हेलीकॉप्टर भेजने हैं। वहाँ रेड कमांडोज की लाशें बिखरी हुई हैं। रेड कमांडोज के जरिए वहाँ से न सिर्फ तमाम लाशें हटा दो बल्कि तबाह शुदा ब्लैक बर्ड्स के बाकियात भी हटा दो। चीफ किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके आने से पहले डेजर्ट में ऐसा कोई निशान न रहे जिससे चीफ को ये मालूम हो सके कि वहाँ रेड कमांडोज ने अटैक किया था, काफिले ने तहखाना लहजे में कहा। ओ लेकिन बॉस, चीफ को अगर मालूम हो गया कि 50 रेड कमांडोज और 10 ब्लैक बर्ड्स और इनके 10 पायलट गायब हैं, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा? और आपने बताया है कि कर्नल देवगन को भी पाकिस्तानी एजेंटों ने हलाक कर दिया है, दूसरी तरफ से स्टेफन ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। तुम इसकी फिक्र ना करो, चीफ तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। जब वो आएगा तो मैं खुद ही इन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दूंगा, लेकिन मैं इन्हें हकीकत तभी बता सकूंगा जब तुम इन पाकिस्तानी एजेंटों समेत ब्लैक बर्ड जीरो नाइट हिट कर दोगे, काफिले ने कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, 09 को हिट करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता हूँ, दूसरी तरफ से स्टेफन ने मौतबाना लहजे में कहा। अगर ऐसा हुआ तो रेड कमांडो सेक्शन का मैं तुम्हें इंचार्ज बना दूंगा, काफिले ने कहा। ओ थैंक यू बॉस, अब तो मैं इस ब्लैक बर्ड को हिट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। 09 ब्लैक बर्ड किसी भी सूरत में हेडक्वार्टर के नजदीक नहीं पहुंच सकेगा। रेड कमांडो सेक्शन का इंचार्ज बनना मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास होगा और मैं इस एहसास को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे बाहर जाकर ही क्यों ना इन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करना पड़े, दूसरी तरफ से स्टेफन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, बाहर जाने की जरूरत इन्हें हलाक करने के लिए तुम्हारे जीरो एक्स मिसाइल ही काफी होंगे, काफिले ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी बॉस, मैंने एक इम्कानी बात की थी, दूसरी तरफ से स्टेफन ने जल्दी से कहा। ओके, इस हेलीकॉप्टर को हिट करने के बाद मुझे लाजमन इन्फॉर्म करना, काफिले ने कहा और फिर इसने दूसरी तरफ से स्टेफन का ओके बॉस सुनकर रिसीवर कैडर पर रख दिया। इसके चेहरे पर अब कदरे सुकून के तासरात थे। इसे बर वक्त जेकर का ख्याल आ गया था जो 09 ब्लैक बर्ड का मखसूस पायलट था और काफिले से बखूबी जानता था। 09 ब्लैक बर्ड के जिस पायलट से इसकी बात हुई थी, इसकी आवाज बदली हुई थी। टेंशन की वजह से इसने पहले इस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर अचानक इसके जहन में अजीब सी उलझन पैदा होना शुरू हो गई थी और जब इसने उलझन की तरफ तवज्जो दी तो इसे याद आ गया था कि 09 ब्लैक बर्ड का पायलट जेकर था, जबकि इसने जिस पायलट से बात की थी वो आवाज जेकर की नहीं थी। अब इसे यकीन था कि स्टेफन 09 ब्लैक बर्ड को हर सूरत में हिट कर देगा और इमरान और इसके साथ ही इस ब्लैक बर्ड में मौजूद हुए तो वो भी नहीं बच सकेंगे। 20 मिनट मुसलसल तेज रफ्तारी से प्रवास करने के बाद इमरान ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम करना शुरू कर दी थी। रफ्तार कम करने के साथ साथ इसने हेलीकॉप्टर की बुलंदी भी कम करनी शुरू कर दी थी। इसकी नजरें कंप्यूटराइज्ड मीटर पर जमी हुई थी जिससे इसे मालूम हो रहा था कि इसने कितना सफर किया है और हेडक्वार्टर वहाँ से कितनी दूर था। क्या बात है, ये तुम हेलीकॉप्टर नीचे क्यों ले जा रहे हो? जूलिया ने इसे हेलीकॉप्टर नीचे ले जाते देख कर पूछा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं हेलीकॉप्टर डायरेक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ले जाऊं ताकि वो हमें देखकर आसानी से हिट कर दें? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब, क्या वो हमें हेलीकॉप्टर में मौजूद प्रोटेक्शन लाइट की मौजूदगी में भी चेक कर सकते हैं, जूलिया ने हैर भरे लहजे में कहा। इस लाइट प्रोटेक्शन से हमें सिर्फ सैटेलाइट सिस्टम से चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए इन्होंने वहाँ लाइव कैमरे लगा रखे होंगे, जिनसे वो हमें देख भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। पहचान कैसे सकते हैं? हम मुसलसल मेकअप में रहे हैं, इन्होंने कहा हमारे असली चेहरे देखे होंगे, खावर ने कहा। हमारे इन चेहरों को तो उन्होंने देख ही लिया होगा, जिन हुरियों में हमने इनके रेड कमांडोज को खत्म किया था, इमरान ने कहा। तो खावर ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन अब हम हेडक्वार्टर से कितनी दूरी पर हैं? जूलिया ने पूछा। 10 से 12 किलोमीटर का फासला है और मैं निजी परवाज रख कर ये फासला भी कम कर रहा हूँ, ताकि हमें अगर पैदल भी सफर करना पड़े तो सफर तवालत इख्तियार न करे, इमरान ने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर में इन्हें खुश खुराक के डब्बे और मिनरल वाटर की बोतलें मिल गई थीं, जो रेड कमांडोज के लिए इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल के लिए मौजूद थीं। इन्होंने खुश खुराक खाकर और पानी पीकर अपनी भूख प्यास मिटा ली थी, जिससे वह बिल्कुल हशाश बशाश नजर आ रहे थे। ये ठीक है, अगर हमें जमीन से घेरे में लेने की कोशिश की गई तो हम इनका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, सफदर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। इमरान ने हेलीकॉप्टर मजीद नीचे किया और फिर उसने रफ्तार मजीद कम कर दी। अब तुम एक एक करके नीचे कूद जाओ, इमरान ने कहा। कूदने की क्या जरूरत है, तुम हेलीकॉप्टर नीचे उतारो, हम सब इजी होकर निकल जाएंगे। फिर तुम इसी हेलीकॉप्टर को पहले हेलीकॉप्टर की तरह ऑटो पायलट कर देना। अगर हेडक्वार्टर की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को हिट करने की कोशिश की गई, तो मिसाइल खाली हेलीकॉप्टर से ही टकराएंगे, जूलिया ने कहा। नहीं, मैं इस हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतार सकता, हेलीकॉप्टर में जो कंप्यूटराइज्ड आला लगा हुआ है, इससे हेडक्वार्टर वालों को भी पता चल रहा होगा कि हम कितनी बुलंदी पर हैं और किस रफ्तार से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने वक्ती तौर पर कंप्यूटर डेटा बदल दिया है, अब अगर हेलीकॉप्टर की चेकिंग की जा रही होगी तो इन्हें ऐसा ही लगेगा कि हेलीकॉप्टर 2000 फीट की बुलंदी पर है और इसकी रफ्तार 300 मील फी घंटा है। हेलीकॉप्टर से इन्हें इस वक्त तक डमी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जब तक हेलीकॉप्टर फिजा में रहेगा, जैसे इसकी पैड जमीन से लगेंगे इन्हें फौरन पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो सब उठ खड़े हुए। इन्होंने दोनों तरफ के दरवाजे खोल लिए थे, इमरान हेलीकॉप्टर और नीचे ले गया और इसने हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर नजर रखते हुए रफ्तार इस कदर कम कर ली थी कि इसके साथियों को नीचे कूदने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो सब एक एक करके अपना सामान लेकर नीचे रेत पर कूदते चले गए। सबसे आखिर में जूलिया ने छलांग लगाई थी, रेत पर गिरते ही इसने कलाबाजी खाई और सीधी होकर तेजी से उठकर खड़ी हो गई। जूलिया को कूदते देखकर इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर इसने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट कंट्रोल पर फिक्स करते हुए अपनी साइड का दरवाजा खोला और फौरन बाहर छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए इसने पैरा ट्रॉपिंग की और कलाबाजी खाता हुआ पैरों की बल जमीन पर आ गया। हेलीकॉप्टर ऑटो पायलट पर तेजी से ऊपर उठता चला गया था और इसी तरफ बढ़ रहा था जिस तरफ इमरान पहले से ही इसे ले जा रहा था, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक दूर से इन्हें एक मिसाइल इस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मिसाइल देखकर सब चौंक पड़े। इसी लम्हे मिसाइल बिजली की इसी तेजी से हेलीकॉप्टर से आ टकराया। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर की फिजा में ही टुकड़े उड़ते चले गए और इसके जलते हुए टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। खुदा की पनाह, अगर हमें कुछ देर हो जाती तो इस हेलीकॉप्टर के साथ हमारे भी टुकड़े उड़ जाते, जूलिया ने कहा। वो सब भागते हुए एक दूसरे के करीब आ गए थे। इमरान साहब जीनियस हैं, ये आने वाले खतरे को बहुत पहले भांप लेते हैं, इसलिए उन्होंने हमें पहले ही इस हेलीकॉप्टर से निकाल लिया था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो यार, अगर जीनियस होता तो अब तक दो बच्चों का बाप न बन गया होता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, दो बच्चों का बाप क्या मतलब? क्या जेनियस इंसान ही दो बच्चों का बाप बन सकता है, कोई और नहीं? जूलियन ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, जीनियस इंसान ही हम दो और हमारे दो पर अमल करता है, वरना जिसको देखो बच्चों की लाइनें ही लगाना शुरू हो जाता है। किसी को 8 बच्चे हैं तो किसी के 10, और कोई तो ऐसा है जिसने पूरी फुटबॉल की टीम ही बनाई होती है। महंगाई के इस दौर में जहां एक के अकेले इंसान के लिए अखराजात ही पूरे नहीं होते, वहां 10-12 बच्चों का बोझ उठाना पड़े, ये कहाँ की अकलमंदी है? मैं तो ऐसा करने वाले को गधा ही कहूँगा, क्योंकि बोझ ढोने का काम कोई गधा ही कर सकता है, और गधा किसी भी सूरत में जीनियस नहीं हो सकता, इमरान ने कहा, और वो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। बच्चे दो हों या दो दर्जन, इनका बोझ ढोना ही पड़ता है, ये हर बाप का फर्ज है। इसमें जीनियस होने या न होने वाली कौन सी बात है? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। मैं तो सिर्फ दो ही बच्चों पर इत्तफाक करूँगा, तुम चाहे दो दर्जन बच्चे पैदा कर लेना, मुझे भला क्या एहसास हो सकता है? क्यों जूलिया? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, और वो सर एक बार फिर हंस पड़े। फजूल बातें मत करो, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा, ये फजूल बातें हैं? अरे मैं घर बसाने और घर में रौनक लाने की बातें कर रहा हूँ, और तुम इसे फजूल बातें कह रही हो, इमरान ने जवाबन मुंह बनाकर कहा। हम इस वक्त खतरे के करीब हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम यहीं रुके रह जाएं और दुश्मनों को फिर मालूम हो जाए कि हम इस हेलीकॉप्टर में भी हलाक लिए हुए हैं। इस बार अगर इन्हें हमारे जिंदा होने का इल्म हो गया तो वो हमें हलाक करने के लिए यहाँ रेड कमांडोज की पूरी प्लाटो ही भेज देंगे। सफदर ने जूलिया को गुस्से में आते देखकर बात बदलते हुए कहा, अब हम हेडक्वार्टर से कितनी दूर हैं? जूलिया ने पूछा। 8 किलोमीटर का तो फासला होगा, कैप्टन शकीन ने कहा, जो इमरान के साथ हेलीकॉप्टर के कंप्यूटराइज मीटर को देखता रहा था। 8 किलोमीटर का सफर भी कम नहीं है, हमें वहां तक पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे, सफदर ने कहा। तो चलो, हमारी किस्मत में पैदल चलना ही लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इमरान ने बेचारगी से कहा, तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। इस बार इनके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ और टीले थे, वो इन पहाड़ियों और टीलों के दरमियान से गुजरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कंप्यूटराइज्ड मीटर का डेटा इमरान के जहन में मौजूद था, और इसे इस बात का अंदाजा था कि हेडक्वार्टर हार डेजर्ट के किसी हिस्से में और कहाँ वाक़ हो सकता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अब दिन ढलना शुरू हो गया था, इमरान अपने साथियों को लेकर एक पहाड़ी की तरफ आ गया था, जिसकी दूसरी तरफ वसी मैदान फैला हुआ था। वो सब पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थे और दूसरी तरफ मैदान को ही देख रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक ब्लैक हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर इसी मैदान में ही कहीं मौजूद है, इमरान ने मैदान में नजर डालते हुए कहा। यहाँ तो रेतीला मैदान ही नजर आ रहा है, इतने बड़े मैदान में हम नीचे मौजूद हेडक्वार्टर को कैसे ढूंढ सकते हैं? जूलिया ने हेड भरे लहजे में कहा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 21 में समाप्त फरमाएं।